मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 2 अगस्त 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अभिषेक कुमार, आपका गांव है बिशुनपुर गीधा, जिला मुजफ्फरपुर बिहार। सरोज गोचर, आप कोटा राजस्थान से हैं। वैशाली चंदेल, आप बरेली मध्य प्रदेश से हैं। और आशीष द्विवेदी, आपका गांव है सपही, जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को कुछ सूचनाएं मैं आप सबको दिया करता हूं। शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है। जो पुराने श्रोता हैं वो इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन नए श्रोता इस बात को नहीं जानते, इसलिए मुझे मित्रों बातें हर शुक्रवार को दोहरानी पड़ती हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। प्रेस क्लिपिंग्स लेकिन आपको सैटरडे को भी मिलेंगी। संडे को प्रेस क्लिपिंग्स हम लोग नहीं दे पाते हैं और आपने संडे के अखबार देखा भी होगा कि उसमें उस तरह की सूचनाएं नहीं होती हैं, स्पेशल इश्यू की तरह आते हैं, तो उसमें कहानियां, कविताएं, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट अगर कहीं आर्टिकल देखने में आ जाता है तो वो आपको मंडे को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि आपको अपने दिमाग में कुछ इस तरह की बात नहीं रखनी चाहिए कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, योजना के आपको 2 आर्टिकल प्रोवाइड किए जाएंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, और इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी 2 आर्टिकल होंगे, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, और ये आपको सैटरडे को दिया जाएगा ताकि संडे का आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें और इनके साथ वक्त भी गुजार सकें। इसके साथ ही साथ आपको एक वीकली क्वेश्चन दिया जाता है मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। फ्रेंड्स, इस सूचना के बाद मैं थोड़ी सी जानकारी आपको मुख्य विषय के बारे में दे दूं। मुख्य विषय के तहत मैं आज आपसे पोषण के बारे में बात करूंगा, न्यूट्रिशन के बारे में। लेकिन आइए इससे पहले जो 2 छोटी छोटी घटनाएं हैं थोड़ी सी उनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि आज के अखबारों में काफी कुछ लिखा भी गया है और मैं आपको उससे रिलेटेड दैनिक जागरण का एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं और टाइम्स ऑफ इंडिया का भी जो एडिटोरियल कमेंट है वह भी दे रहा हूं। इनका संबंध इस बात से है कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा प्रशासन है वो कितना कमजोर होता चला जा रहा है। और तीसरी बात कि किस तरीके से जो राजनीति है वह प्रशासन पर जबरदस्त दबाव डाल करके उसे कमजोर करती चली जा रही है, इनसे मामला जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो भी उन्नाव रेप केस का जो मामला जोर पकड़े हुए है, अभी स्थिति आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और वहां के सारे जो केसेस उत्तर प्रदेश में चल रहे थे वो अब दिल्ली ट्रांसफर किए गए। अखबारों में उसके बारे में काफी कुछ बातें लिखी गई हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है वो बहुत ही गंभीर कमेंट है। और देखिए, जब भी इस तरह के गंभीर कमेंट आते हैं तो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं ना, आप प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपको इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इसकी ताकत है, जो इसकी शक्तियां हैं, अधिकार हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए, और खासकर लेटेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया वो कमेंट है कि देश में कानून के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कानून अपना काम नहीं कर रही है। लोकतंत्र का आधार क्या है? कानून, कानून के समक्ष समानता। अब आप देखिए कि एक रेप से पीड़िता लड़की है और किस तरीके से वो जगह जगह गुहार लगा रही है, उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए पुलिस फोर्स दिए गए हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट करने वाले राजनीतिक नेता हैं, लेकिन उनके चूंकि वो राजनीतिक नेता हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ये सारी घटनाएं अगर आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आपके मन में एक स्वाभाविक तौर पर क्षोभ पैदा हो जाता है। तो ये तो प्रशासन, पुलिस और राजनीति की स्थिति हो गई। इससे पहले और भी आपने कुछ घटनाएं देखी, इंदौर में ये इसी तरह की घटना हुई थी कि वहां के विधायक ने बकायदे नगर निगम के अधिकारियों पर अटैक कर दिया था, हमला, बकायदे मारपीट की है, और भी इस तरह की घटनाएं आई हैं जिनके ऊपर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहीं तक सीमित नहीं है। जिस न्यायालय ने ये कमेंट किया है, उस न्यायालय के अपने घर की क्या स्थिति है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का ही कमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेंट किया कि कुछ बकायदे के कुछ दलाल और बिचौलिए इस अदालत का जो भवन है के भीतर घुसकर कोर्ट स्टाफ को मैनिपुलेट कर रहे हैं। कोर्ट स्टाफ को पता लगा कि रजिस्ट्री नहीं भेजी जा रही है, जैसे उन्नाव के मामले में ही देखे कि लड़की ने बकायदे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी और बहुत दिनों तक वो लेटर रजिस्ट्री में पड़ी रही। रजिस्ट्री का मतलब है कि हर बड़े ऑफिस में एक खंड होता है, एक विभाग होता है, है ना, जहां आपके लेटर्स आते हैं वो छांट करके संबंध अधिकारियों को पहुंचा देते हैं। और आपको भी अगर कुछ देना है, ऑफिस वालों को कुछ भेजना है बाहर, तो ऑफिस वाले अधिकारी भी उस रजिस्ट्री विभाग को दे देते हैं और फिर वो रजिस्ट्री विभाग उनमें एड्रेस वेड्रेस जो भी है करके रिकॉर्ड वगैरह नोट करके और फिर उन जगहों पर भेज देती है। मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि वो हर डिपार्टमेंट का अपना पोस्ट ऑफिस है, वहां चीजें दब रही हैं, वहां मैनिपुलेट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि इस तारीख को जाना है, इस बेंच में ये होना है, वो सारे के सारे बदलाव हो जा रहे हैं। तो ये मैनिपुलेशन हो गया ना कि वहां कुछ लोग हैं जो अपने धन के बल पर बकायदे वहां के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। भ्रष्टाचार इस सीमा तक पहुंच चुका है। तो चूंकि भ्रष्टाचार आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसीलिए ये जो नए उदाहरण है आपको लेने चाहिए। कल हम लोगों ने मोटर संशोधन विधेयक पर कुछ बातें की थी। मोटर संशोधन विधेयक को लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया ने एडिटोरियल कमेंट लिखा है और उसमें बहुत सी बातें वही हैं जो हम लोगों ने चर्चा की थी। तो इसका सलूशन क्या है, भ्रष्टाचार का सलूशन क्या हो सकता है? इसके सलूशन के रूप में अक्सर आपको जो सजेशन मिलेगा वो है ई गवर्नेंस, कि आप इलेक्ट्रॉनिक पर आइए, मशीन पर आइए, तो भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। जैसे मोटर संशोधन विधेयक आप लेकर के आ गए, उसमें जुर्माना आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब सवाल यह है कि वो जुर्माना बढ़ा तो दिया गया है, सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन जो लोग इसको लागू करेंगे उनका क्या है, स्टाफ नहीं है, उस पर हम लोगों ने बात की थी। भ्रष्टाचार है, वो ले दे करके मामला सुलटा लेंगे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसमें लिखा है कि बकायदे आप इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पर चले जाइए, आप स्पीड कैमरा लगा दीजिए, जितने चौराहे हैं आप उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, जैसे कोई रेड लाइट ग्रीन लाइट को तोड़ेगा तो पता लगा वो उसमें दर्ज हो जाएगा। इस तरह के विदेशों में सिस्टम है और बकायदे उसका नंबर दर्ज हो जाएगा और उसके घर पर जुर्माने की जो रसीद है वो अपने आप पहुंच जाएगी, क्योंकि सारी चीजें दर्ज है। जो हेलमेट नहीं पहना है, जो आपके सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, वो कैमरों में दर्ज होते चले जा रहे हैं। जो ओवर स्पीड से चल रहा है वो कैमरे में दर्ज हो गया है, जो ओवर लोड करके गाड़ी चला रहा है वो कैमरे में दर्ज हो गया है, और बकायदे चीजें उससे संबंधित जो व्यवस्था होगी उनके घर तक पहुंचती चली जाएगी। तो टेक्नोलॉजी ने हमें यह सुविधा प्रोवाइड कर दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है दोस्तों। तो भ्रष्टाचार के बारे में अब आपको थोड़ा सा नए ढंग से भी विचार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक सोचिए कि इसकी पकड़ में आ चुका है। दोस्तों एक और खबर है कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो पिछले साल पांचवें स्थान पर आ गई थी, अब वो गिर के सातवें स्थान पर चली गई है, क्योंकि आपको मालूम है कि 2018 के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मंदी के दौर से गुजर रही है, उसमें सुस्ती आ गई है। और इस बार के बजट को देखने के बाद तो लोग और ज्यादा परेशान हैं कि अब हमारी अर्थव्यवस्था और ज्यादा खराब होने की दिशा में बढ़ेगी। तो छठवें स्थान पर कौन आ गया, वो पांचवें स्थान पर कौन आ गया, ब्रिटेन। हम ब्रिटेन को रिप्लेस करके आए थे, ब्रिटेन ने अब हमको रिप्लेस कर दिया है और वो पांचवें पे आ गया है। छठवें पर फ्रांस है और सातवें पर अब हम आ गए हैं रूस, आए जो आपका अमेरिका है वह तो टॉप पर है ही। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पोषण न्यूट्रिशन। आज आपको एक करेंट कंटेंट के तहत आर्टिकल प्रोवाइड किया जा रहा है, पोषण जागरूकता, ये हिंदू में छपा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सिलेबस में बकायदे जो वीकर सेक्शन है उनके बारे में लिखा गया है, जो महिलाएं हैं जो बच्चे हैं वो वीकर सेक्शन में ही आते हैं। इसमें जो आप आर्टिकल में पढ़ेंगे उसमें एक तथ्य उन्होंने दिया है कि हम जागरूकता पैदा करें इसके बारे में, महिलाओं में, सबसे ज्यादा महिलाओं में, माताओं में ही जागरूकता पैदा करनी होगी। और उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत उदाहरण भी दिए हैं, आपको नोट कर लेना चाहिए, आंध्र प्रदेश और राजस्थान का, कि उन्होंने जागरूकता के बारे में बहुत अच्छा काम किया। जागरूकता के लिए प्रति महिला 1200 रुपये खर्चाया और उसमें अध्ययन में पाया गया कि अगर जागरूकता के लिए 1 रुपये खर्च किया जाता है तो उसके बदले में हमें 61 और 43 रुपए मिलते हैं, मतलब दो अलग अलग स्टेट के हैं, आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप सोचिए कितना इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है कि आप 1 रुपए खर्च कर रहे हैं और बदले में आपको 61 रुपीज मिल रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा इंपैक्ट है नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का। दोस्तों जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसी के तहत आपको एक प्रोग्राम की जानकारी मिलेगी जिससे ये आर्टिकल शुरू होता है, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो खासकर ICDS के नाम से बहुत पॉपुलर है। मैं थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बेसिकली इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज हैं 1975 में शुरू की जा चुकी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवाओं में एक है, सबसे बड़ी सेवा है। इसके तहत लगभग 6700 योजनाएं चल रही हैं और आंगनबाड़ी का नाम आप सुनते होंगे। इमेजिन कीजिए कि भारत में 12,41,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। आंगनबाड़ी में महिलाएं काम करती हैं, गांव के स्तर पर ये काम करती हैं और बेसिकली इसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चे, ये जो प्रोग्राम ही है ICDS 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है और माताओं के लिए है। बकायदे इस केंद्र में ये बच्चे, ये माताएं जाती हैं, उन्हें सलाह दी जाती है, उनके उनका टीकाकरण किया जाता है, उनके कुपोषण का ध्यान रखा जाता है। जो ICDS जो योजना है उसका पर्पज ही था कि बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराया जाए, स्कूल पूर्व की जो प्री स्कूलिंग है वो एजुकेशन दी जाए, उनके प्राइमरी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उनका टीकाकरण किया जाए, समय समय पर उनका हेल्थ चेकअप किया जाए और अगर कोई दूसरी चीजें जरूरत की हैं तो उन बच्चों को दी जाए ताकि ये बच्चे स्वस्थ रह सकें, क्योंकि यही बच्चे आगे चल करके हिंदुस्तान के भविष्य का हिस्सा बनेंगे, चाहे वो श्रम का हिस्सा हो, चाहे वो प्रशासन का हिस्सा हो, जिसका भी हिस्सा हो। अगर ये कुपोषित रह जाएंगे तो सीधी सी बात है कि आने वाला भविष्य कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में मैं आपको एक रिपोर्ट की भी याद दिलाना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो पिछले महीने की शुरुआत में आई थी, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संस्था आपको याद होनी चाहिए UNDP। इसने एक इंडेक्स जारी किया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी। तो इसमें गरीबी को इन्होंने परिभाषित कैसे किया है, तो देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जिसके आधार पर उन्होंने गरीबी को परिभाषित किया और उसमें जो पहला पॉइंट है वह है पोषण में कमी। पोषण में अगर कमी है तो गरीबी होना ही हो रहा है, क्योंकि जो बच्चा कमजोर पैदा हो रहा है और कमजोर ही रह रहा है तो अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर कर पाएगा, और बीच बीच में बीमार पड़ता रहेगा, उसमें ऊर्जा की कमी है तो गरीबी के दुष्चक्र में फंसता चला जाएगा। इसके पॉइंट्स थे पोषण में कमी, फिर यह कि शिशु मृत्यु दर की क्या स्थिति है, वो भी पोषण से जुड़ा हुआ है, जो घर में जो खाना बनाया जा रहा है, ईंधन, खाना बनाने का ईंधन, उसकी क्या स्थिति है, स्वच्छता की क्या स्थिति है, तो स्वच्छता में तो अब हम घर काफी कुछ बेहतर हो गया, रसोई गैस की स्थिति भी बेहतर हो गई है, पीने का पानी उन्हें किस तरीके का मिल रहा है, सीधे हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अब 2024 तक नल से जल की योजना शुरू की गई है, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी क्या है, बिजली की उपलब्धता क्या है, उनके पास अपना घर है कि नहीं है, और फिर एक पॉइंट और भी था कि उनके पास संपत्ति की क्या स्थिति है। इस रिपोर्ट में खासकर एक जो बात कही गई है और आपको ये नोट भी कर लेना चाहिए, एनालिसिस में आपके काम आ सकता है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया, 101 देशों की रिपोर्ट थी कि 2006 से 2016 तक यानी कि 10 सालों में भारत ने गरीबी में कमी लाने में बहुत सफलता प्राप्त की है। ये इनका स्टेटमेंट है, भारत 10 सालों में लगभग 27.1 करोड़ यानी कि 27 करोड़ 10 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आ गया है। इसी के तहत एनालिसिस के पॉइंट से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी उन्होंने बताया है कि अब हमारे पास जो गरीबों की संख्या है वो लगभग 37 करोड़ रह गई है, हमारे टोटल पॉपुलेशन का 28%, 37 करोड़। और इस 37 करोड़ में से 19.5 करोड़ लोग, ऑलमोस्ट कह लीजिए कि आधे लोग केवल 4 राज्यों में हैं, और वो 4 राज्य हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये कुछ बातें मैंने आपको पोषण के बारे में बताई और रिपीट करना चाहूंगा कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं फ्रेंड्स, वो सब आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। मेरे पास कुछ मेल आ रहे हैं जिसमें वो अदल बदल कानून के बारे में कह रहे हैं कि एम लक्ष्मीकांत की किताब में 1/3 कहा गया है जबकि दूसरी जगह 2/3 मिल रहा है। देखिए जो लक्ष्मीकांत जी की आप किताब पढ़ रहे होंगे हो सकता है कि वो पुराना एडिशन हो, नया ये उसमें फिर संशोधन किया गया, तो शुरुआत में 1/3 लोगों के दल बदलने पर ही उनको मान्यता मिल जाती थी लेकिन बाद में उसमें संशोधन किया गया है और अब उसे 2/3 कर दिया गया है, तो आप उसे करेक्ट कर लें। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से दो मित्रों के नाम हैं अरविंद चंडीगढ़ से और अभिनव राठौर बदायूं से, आप सबका बहुत बहुत आभार। दोस्तों अब 2 दिनों के बाद मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबके प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और अब मैं अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।